महाबंध पुस्तक पहिली लेक्चर नंबर 10 ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सौवसाहूणं भूतबलिप्रणीतं तं बन्धतत्त्वप्रकाशकम् महाधवलविख्यातं महाबंधं नमाम्यहम्। आचार्य शिव बुधबली भट्टारक द्वारा प्रणीत यह महाबंध नाम का सिद्धांत शास्त्र है। ये षटखंडागम का छठवें नंबर का खंड है और इसमें जो पहली पुस्तक है उसका नाम है प्रकृति बंध अधिकार। पहली पुस्तक के 44 नंबर के पृष्ठ पर हम आ गए हैं। पहला अधिकार था प्रकृति समुत्कीर्तन, यानी कौन कौन सी प्रकृतियां हैं बस उसकी उसमें चर्चा की थी, मूल प्रकृति और उत्तर प्रकृति। अब यहाँ का विषय है प्रकृति बंध विचय स्वामित्व, बंध विचय स्वामित्व यानी उसके स्वामी की बात चल रही है। तो हमने पहले से लेकर सभी गुणस्थानों में जो बंध विच्छित उसकी बात देखी थी। अब यहाँ पूछ रहे कि कौन कौन से प्रकृतियों के बंधक कौन है, तो उत्तर प्रकृतियों में देखते हुए क्रम क्या है, ज्ञानावरण, फिर दर्शनावरण, फिर वेदनीय, फिर मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। अब ज्ञानावरण के साथ साथ जो है उसको उसके साथ बताएंगे। इसे पांचों ज्ञानावरण कौन बंधक है, पहले से लेकर दसवें तक सारे बंधक है। तो पहले से दसवें तक और कौन 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 से प्रकृतियों के बंधक है, तो दसवें में जो बनती है उस वहां बंध विच्छित्ति होती है। चार दर्शनावरण है, पांच अंतराय है, यशस कीर्ति है, उच्च गोत्र है, उनको सबको कहना उसके साथ। अब चार दर्शन ज्ञानावरण के तो हो गए, अभी दर्शनावरण चार लिए, फिर स्थानगुरुद्धि को लिया। स्थानगुरुद्धि के साथ जाने वाली वो सब पहले और दूसरे गुणस्थान वाले बांधते हैं। अब दर्शनावरण अभी पूरा नहीं हुआ तो निद्रा प्रचलक के पहले से लेकर आठवें के पहले भाग तक बंधक है। इस तरह से इसको सोचते सोचते हमने ये सारा देखा था। अब हम आए हैं तीर्थंकर प्रकृति का कौन बंधक है पूछा गया था, तो चौथे गुणस्थान से आठवें गुणस्थान तक के बंधक है। उसके पश्चात तीर्थंकर प्रकृति के जो बंधक के कारण है उसकी चर्चा की। प्रश्न ये पूछा था कि बाकी प्रकृतियों के बंधक के कारण की क्यों नहीं चर्चा की, तो उनके बंधक के कारण मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग होते हैं। तीर्थंकर प्रकृति के लिए मिथ्यात्व तो नहीं कह सकते, असंयम के कारण बंध होता है ऐसा भी नहीं कह सकते, कषाय के कारण होता है ऐसा भी नहीं कह सकते। तो उन्होंने सारा रूल आउट किया। अब उसके जो 16 जो तीर्थंकर प्रकृति के बंधक के कारण जो है उसकी अपनी चर्चा चल रही है। उसमें से कहते कि 16 अलग अलग भी भेद से भी कथन करेंगे, या तो एक में अन्य कैसे गर्भित है उसकी भी उन्होंने बात बताई। कल दर्शन विशुद्धि कहने से उसमें और क्या क्या गर्भित है, विनय संपन्नता कहने से उसमें ज्ञान विनय, दर्शन विनय, उसकी कैसी बातें उसमें गर्भित होती है उसकी उन्होंने चर्चा की थी। अब हम आए हैं 44 पृष्ठ पर। ये शंका समाधान के बाद ये जो पैराग्राफ है यहाँ पर ऊपर से तीसरा पैराग्राफ, शील व्रतेशु निरतिचारता से भी तीर्थंकर नाम कर्म का बंध होता है। अब उसका अर्थ समझा रहे यहाँ पर, तो कहते हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह से विरति होना व्रत है। ये जो पांच पाप है उससे विरत, उससे हटना, उसका त्याग होना, उसको कहेंगे व्रत। व्रत का लक्षण करने वाला शील कहते हैं, व्रत शीलेशु जो आता है ना, शील व्रतेशु। पहले में व्रत क्या है, ये पापों का जो कहते हैं उससे विरत होना वो व्रत है, और उसका रक्षण करने वाला वो शील है। मद्यपान, मांस भक्षण, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुसक वेद का अपरित्याग अतिचार कहलाता है। निरतिचार है ना ऊपर, उसमें अतिचार नहीं लगना चाहिए। तो कहते इनका अभाव करना, यानी अतिचारों का अभाव करना, शील व्रतेषु निरतिचारता है, इससे तीर्थंकर कर्म का बंद होता है। शंकाकार पूछते यहां शेष 15 कारण किस प्रकार संभव हो गए, क्योंकि उन्होंने एक एक में अन्य कैसे गर्भित है उसकी चर्चा की थी। समाधान, सम्यक दर्शन, क्षण लव प्रतिबोधनता, लब्धि संवेग संपन्नता, साधु समाधि संधारणता, वैयावृत्य योग युक्तता, साधु प्रासुक परित्यागता, अरहंत बहुश्रुत प्रवचन भक्ति, प्रवचन प्रभावनाता प्रभावनता के बिना शील व्रतेषु अन्नतिचारता संभव नहीं है। असंख्यात गुणश्रेणी युक्त कर्म निर्जरा में जो हेतु है उसे व्रत कहते हैं। देखो यहाँ व्रत की अलग से परिभाषा बताई। देखो ये जो ऐसी असंख्यात गुण श्रेणी जो केवल बाहर महाव्रत के धारण करने से तो नहीं होती है, बिना सम्य दर्शन के, बिना सम्य दर्शन के यह असंख्यात गुण श्रेणी रूप निर्जरा नहीं होती है, तो कहते उसको व्रत कहते हैं। सम्यक्त्व के बिना, आगे लिखा है, केवल हिंसा असत्य चौर्य अब्रह्म तथा परिग्रह के त्याग मात्र से ही वह गुणश्रेणी निजरा नहीं हो सकती। बात है ना, बिना सम्यक्त्व के बाह्य में कुछ उसने आचार किए इसलिए उसको असंख्यात गुण यानी गुणश्रेणी निर्जरा नहीं होती। कारण दोनों के द्वारा होने वाले कार्य का एक के द्वारा संपन्न होने का विरोध है, यानी सम्यक्त्व सहित इनका त्याग होना चाहिए, तब वहां जाके गुणश्रेणी निर्जरा होगी। षट द्रव्य नौ पदार्थ के समूह रूप, नौ पदार्थ कहने से वो तत्व, सात तत्व नौ तत्व जिसको कहेंगे, षट द्रव्य नौ पदार्थ के समूह रूप लोक को विषय करने वाली अभीक्षण ज्ञानोपयोग युक्तता के बिना शील व्रतों में कारणभूत सम्यक्त्व की अनुपपत्ति है। क्या कहना चाहते हैं, यानी षट द्रव्य और नौ पदार्थों को बिना जाने सम्यक तो नहीं हो सकता और बिना सम्यक तो के शील और व्रत नहीं हो सकते। इस प्रकार उसमें सम्यक दर्शन के समान सम्यक ज्ञान का भी सद्भाव पाया जाता है, यानी उसमें वो विनय संपन्नता भी उसमें गर्भित हो जाती है। यथाशक्ति तप, यानी अन्य अन्य कैसे उसमें गर्भित होते उसकी बात चल रही, तो अभीक्षण ज्ञानोपयोग भी उसमें गर्भित आ गया। यथाशक्ति तप आवश्यकता परिहीनता तथा प्रवचन वत्सलत्व रूप चारित्र विनय के बिना यह शील व्रतेषु निरतिचारिता नहीं बन सकती। इस प्रकार व्यापक अर्थयुक्त यह भावना तीर्थंकर नाम कर्म के बंध का कारण है। एक एक भावना में अन्य कैसे कैसे गर्भित होते हैं वो सब यहाँ बात चल रही है। आवश्यकेषु अपरिहीनता, आवश्यका परिहीनता ने आवश्यक अपरिहीनता उसका था ना, समता स्तुति अपरिहीनता हीनता नहीं होना, यानी आवश्यक पालना, समता स्तुति वंदना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान तथा विसर्ग के भेद से आवश्यक छह प्रकार का कहा गया है। शत्रु मित्र मणि पाषाण सुवर्ण मृत्तिका में राग द्वेष का अभाव समता है, यानी उसमें कोई इष्ट अनिष्टता नहीं रही उसमें। अतीत अनागत तथा वर्तमान काल संबंधी पंच परमेष्ठियों का भेद न करके नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम इत्यादि द्रव्य स्तुति का कारण नमस्कार स्तुति कहलाता है। ऋषभादि 24 तीर्थंकर, भरतादि क्षेत्रों के केवली, आचार्य, चैत्यालयादिक का पृथक पृथक रूप से नमस्कार करना अथवा गुणों का अनुस्मरण करना वंदना है। स्तुति और वंदना में क्या भाव है? स्तुति में तो सभी पंच परमेष्ठियों को सामान्य से नमस्कार, उसको स्तुति कहेंगे, और विशिष्ट भगवान का नाम लेकर या अन्य को प्रत्येक को प्रत्येक प्रवचन सार में होंगे ना, ते सर्व ने तथा प्रत्येक ने प्रत्येक ने, ऐसे उसको कहेंगे वंदना। पंच महाव्रतों तथा 84 लाख उत्तर गुणों में लगे हुए कलंकों का प्रक्षालन करना प्रतिक्रमण है। यानी सच्चा हमने देखा ना, प्रतिक्रमण तो आत्मस्थिरता ही प्रतिक्रमण है, जिसको निश्चय से कहेंगे। महाव्रतों के विनाश के कारण अथवा उनमें मलिनता लगाने वाले दोषों का जिस प्रकार अभाव होगा, उस प्रकार मैं करूंगा। इस प्रकार चित्त से आलोचना करके 84 लाख व्रतों की शुद्धि का प्रतिग्रह करना प्रत्याख्यान है। प्रतिग्रह करना ही नहीं, उसको हम कहेंगे उसका ऐसा अंगीकार करना, जिसे प्रतिग्रह करना, निश्चय करना। प्रत्याख्यान की बात है, भविष्य के बारे में आलोचना ने जिस प्रकार दोष लगे थे, या वर्तमान की बात है, चित्त से यानी प्रतिक्रमण, आलोचना और प्रत्याख्यान, तीनों की बात है। एक भूतकाल का, एक वर्तमान का, एक भविष्य काल का है। शरीर आहार आदि से मन वचन की प्रवृत्ति को अलग करके ध्येय में रोकने को व्युत्सर्ग कहते हैं। इन 6 आवश्यकों की अपरिहीनता यानी अखंडता, उसको आवश्यका परिहीनता नहीं, आवश्यक अपरिहीनता कहते हैं। इन आवश्यकों में कोई हीनता नहीं होनी चाहिए। इसके द्वारा तीर्थंकर नामक चाहिए, नाम कर्म का बंध होता है। तीर्थंकर धर्म का नहीं है, नाम कर्म का। नाम और क लिखा है मैंने, गोत्र भी कहो, नाम गोत्र कहो, एक ही बात है ना। क्योंकि तीर्थंकर को नाम कर्म भी कहते हैं, वो तो है तो नाम कर्म का भेद, और उसको गोत्र क्यों कहते हैं, क्योंकि उच्च गोत्र के साथ अविनाभावी बनता है, इसलिए उसको गोत्र भी कहा था। यानी ध के बदले क होना चाहिए, बस इतना ही तीर्थंकर कर्म का। यहाँ शेष कारणों का अभाव नहीं होता है। यानी ये आवश्यक परिहीन में, बाकी तो उसका तो सद्भाव ही है, बाकी कारणों का इसका अभाव तो पाया नहीं जाता। दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, व्रतशील निरतिचारता, क्षणलव प्रतिबोधनता, लब्धि संवेग संपन्नता, यथाशक्ति तप, साधु समाधि संधारण, वैयावृत्ति योग युक्तता, प्रासुक परित्यागता, अरहंत बहुषत प्रवचन भक्ति, प्रवचन प्रभावना, प्रवचन वत्सलता, अभीक्षण ज्ञानोपयोग युक्तता के बिना 6 आवश्यकों की निरतिचारिता नहीं बन सकती। क्योंकि मुनिराज है, बताएंगे अभी, अभी आया नहीं है, एक एक को बता रहे हैं, क्रम से ले रहे। अतः आवश्यकेषु अपरिहीनता तीर्थंकर नाम कर्म का चतुर्थ कारण है। एक एक कारण में अन्य अन्य कैसे गर्भित है, उसकी अपनी चर्चा चल रही थी। अब यहाँ कहते क्षण लव प्रतिबोधनता, एक आंकड़ा है ना, नीचे फुटनोट में देखते हैं। आवली असंख्य समय, यानी असंख्यात समयों की आवली होती है। संख्य जावली समूह उत्साहो, संख्यात आवलियों के समूह को उच्छ्वास कहते हैं। सत्तत्थो लवो भणियो, सात उश्वासों का थो होता है, और सात फवों का लव होता है। दूसरा सेकंड कहाँ लिखा था, दो नंबर का फुटनोट कहाँ से आया है, क्षण लव में ही उन्होंने लिया है, क्षण लवा नाम काल विशेष, यानी काल विशेष का नाम है। सम्मत दंशन नानवदशील गुणानम उज्जालनम कलंक पक्खालनम संदुखणम व पड़ियुज्जनम नाम, ये अलग अलग का नाम यह उसके बता रहे। तस्य भावो पड़ियुज्जनदा खणलवाणम पड़ियुज्जनदा खणलव पड़ियुज्जनदा। अब हिंदी में ऊपर बताएंगे, क्षणलव प्रतिबोधनता। क्षणलव शब्द काल विशेष का द्योतक है, जो अभी हमने प्राकृत में देखा ना वही बात है यहाँ पर। उस काल विशेष में सम्यक दर्शन ज्ञान व्रत तथा शील रूप गुणों का उज्ज्वल करना, अर्थात कलंक का प्रक्षालन करना अथवा व्रतादि की प्रदीप्ति अर्थात वृद्धि करना प्रतिबोध है, उसका भाव प्रतिबोधनता है। क्षणलवों की प्रतिबोधनता को क्षणलव प्रतिबोधनता कहते हैं। यह अकेली भावना भी तीर्थंकर नाम कर्म का बंध करती है। यहाँ भी पूर्व की भांति शेष कारणों का अंतर्भाव रहता है। इसमें सब आ गए ना, इतने छोटे काल में समय दर्शन ज्ञान व्रत शील सभी को उज्ज्वल करना है ना वो तो, और उसमें वृद्धि कर देना। अब ये लब्धि संवेग संपन्नता, समय दर्शन ज्ञान चारित्र में जीव के समागम का नाम लब्धि है। हमने लब्धि सार ग्रंथ में भी देखा था जीव की सचमुच लब्धि क्या है, मोक्ष की प्राप्ति, और वो कैसे होता है, संवर निर्जरा से। तो संवर होता है वो दर्शन लब्धि से, निर्जरा है चारित्र लब्धि से, इस तरह से उसमें वो परिभाषा आई थी। तो यहाँ कहते हैं समय दर्शन ज्ञान चारित्र में जीव के समागम का नाम लब्धि है, यानी समय दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति ही लब्धि है, यानी उसको कुछ उपलब्धि हुई ना, उसके कुछ लाभ हुआ है उसको। लब्धि के लिए जो संवेग है वह लब्धि संवेग है। अब संवेग किसको कहा, नीचे फुटनोट में देखो तीन नंबर का लास्ट लाइन, संवेग परम उत्साह धर्मे धर्म फले चित्त। क्या कहते हैं संवेग, क्या कहते हैं धर्म में और धर्म के फल में परम उत्साह को संवेग कहते हैं। उसकी संपन्नता को ऊपर लब्धि संवेग संपन्नता कहते हैं। शेष कारणों के अभाव में इसका सद्भाव नहीं बनता है, यानी अन्य कारण इसके साथ है ही तभी तो ये बात बनेगी। कारण उनके अभाव का और लब्धि संवेग संपन्नता के सद्भाव का विरोध है। इसका अर्थ है अन्य हो गए तभी लब्धि संवेग संपन्नता होती है। तो हम जब लब्धि संवेग संपन्नता से बंद होता है कहेंगे तीर्थंकर प्रकृति का, तो उसमें वो बाकी सब बातें है ही है, ये बात नक्की हो जाती है। इसका नाम लिया तो बाकी उसमें है ही, उसके बिना तो नहीं होता है। नहीं समझे, आप डिग्री लगाते एमए लिखते हैं तो उसके पहले बीए और फिर बाद में एमए लिखते हैं क्या? एमए होने वाला पहले बीए हो चुका है ना, और फिर हम ऐसा भी नहीं लिखते मैट्रिक भी हुआ है और फिर उसने इंटरमीडिएट भी प्राप्त की है। जब पहले पहले वाले डिग्री उसके अंदर है ही है, तो ये लब्धि संवेग संपन्नता में बाकी सब उसके अभाव में ये हो नहीं सकती। अभी आप लब्धि संवेग के बारे में पूछो, क्या पूछ रहे थे? हाँ अभी आ गया, यथा शक्ति तप बल वीर्य को प्राकृत में थाम कहते हैं। अनशनादि बाह्य और विनयादि अंतरंग द्वादश प्रकार के तप हैं। ये बारह प्रकार के तप में छह अंतरंग छह बहिरंग होते हैं ना, वो आता ना अनशन उदार्य वृत्ति परिसंकांड से परित्याग वगैरह। शक्ति के अनुसार तप करने से तीर्थंकर कर्म का बंध होता है। यह भावना ज्ञान दर्शन के बल से संपन्न धीर पुरुष के होती है, यानी समय दर्शन ज्ञान सहित है ही है और अंतरंग में स्थिरता है अधिक, उसकी बात है। तथा दर्शन विशुद्धता आदि के अभाव में यह नहीं पाई जा सकती, क्योंकि बिना सम्यक दर्शन के तो तप ही नहीं होता है। इससे अकेली इस भावना को तीर्थंकर नाम कर्म का कारण कहा है। साधु प्रासुक परित्यागता, जो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, वीरति, क्षायिक सम्यक की साधना करता है, उसे साधु कहते हैं। प्रासुक का एक अर्थ है वह वस्तु जिससे जीव निकल गए हों, और दूसरा अर्थ है निरवध्य, निर्दोष वस्तु। साधुओं को ज्ञान, दर्शन, चारित्र का परित्याग अर्थात दान प्रासुक परित्यागता है। परित्याग यानी वो त्यागना नहीं, वो तो दान के अर्थ में आया है। ज्ञान, दर्शन, चारित्र का परित्याग रूप दान गृहस्थों में संभव नहीं हो सकता, कारण वहां चारित्र का अभाव है। रत्नत्रय का उपदेश भी गृहस्थों में नहीं बन सकता है, कारण उनमें दृष्टिवाद आदि ऊपर के सूत्रों के उपदेश का अधिकार नहीं है। अतः साधु प्रासुक परित्यागता रूप कारण महर्षियों के होता है, यानी वो जो स्वयं उस पोजीशन में है, अधिक आत्मस्थिरता है, वो अन्य साधुओं को इसका दान देते हैं, ऐसा उसका कहना है। दान देना यानी कुछ ले लो समय दर्शन, ऐसा थोड़ा ही होता है, उसका उपदेश की बात होती है। और दृष्टिवाद वगैरह जो सूत्र है उनके उपदेश देना, ये उसका अर्थ होता है। यहां भी शेष कारणों का अभाव नहीं है। अरहंतादिक की भक्ति, नव पदार्थों का श्रद्धान, शील व्रतों में निरतिचारिता के अभाव में ज्ञान चारित्र का परित्याग अर्थात दान असंभव है, कारण इसमें विरोध आता है। अतः केवल इस भावना से भी तीर्थंकर कर्म का बंध होता है। 46 पेज पर है। साधु समाधि संधारणता, ज्ञान दर्शन चारित्र में सम्यक प्रकार से अवस्थान होना समाधि है। वो निश्चय जो है ना, रत्नत्रय अवस्थान है, उसमें स्थिरता है। भले प्रकार धारण करने को संधारण कहते हैं। सम शब्द लगाने से वो भले प्रकार यानी यथार्थ, समीचीन, ऐसा उसका अर्थ होता है। साधुओं की समाधि का भले प्रकार धारण करना साधु समाधि संधारण है। समाधि का धारण करना यानी अपने स्वभाव में स्थिरता करना, किसी कारण से प्राप्त होने वाली समाधि को देखकर सम्यक भी प्रवचन वत्सलता, प्रवचन प्रभावना, विनय संपन्नता, शीलव्रत, अतिचार वर्जित, अरहंतादिक में भक्तिवश जो धारण करता है वह समाधि संधारण है। यहां भी शेष कारणों का अभाव नहीं है, क्योंकि इसका सद्भाव उन कारणों के अभाव में नहीं बन सकता। वैयावृत्य योग युक्तता, जिस कारण से जीव सम्यक्त्व, ज्ञान, अरहंत भक्ति, बहुशुद्ध भक्ति, प्रवचन वत्सलता आदि के द्वारा वैयावृत्य में लगता है, उसे वैयावृत्य योग युक्तता कहते हैं। इस प्रकार अकेली इस भावना से भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। यहाँ शेष कारणों का यथासंभव अंतर्भाव जानना चाहिए। यानी एक एक भावना से होता है, जब कहते हैं तो उसमें अन्य भावना कैसे गर्भित है उसको बताते हैं। अरहंत भक्ति, घातिया कर्मों के नाश करने वाले, केवल ज्ञान के द्वारा संपूर्ण पदार्थों के देखने वाले अरहंत है, उनकी भक्ति से तीर्थंकर नाम कर्म का बंध होता है। यह भावना दर्शन विशुद्धता आदि के अभाव में नहीं पाई जाती, कारण इसमें विरोध आएगा, क्योंकि हमने वो भक्ति यानी बाहर से उनके जो शरीर से झुककर नमस्कार करना और उसमें वचन से भक्ति गाना, ये उसका अर्थ नहीं है। ये बताए ना, दर्शन विशुद्धि के बिना बन नहीं सकती। यानी भक्ति कहो, उपासना कहो, उनकी जो नमस्कार कहो, ये किसके होता है? समय दृष्टि के, जो क्योंकि वो अरिहंतों की भक्ति तभी कहलाएगी जब अरिहंत जैसा अपना स्वरूप जान लिया उसने। बहुश्रुत भक्ति द्वादशांग के पारगामी को बहुश्रुत कहते हैं। पारगामी ने उसे उसका अभ्यास है, उसके विशेषज्ञ है। उनमें भक्ति का अर्थ है उनके द्वारा व्याख्यान किए गए आगम का अनुगमन करना, यानी जो द्वादशांग के श्रुत धारक है उन्होंने जो व्याख्यान किया, उपदेश दिया है, अनुगमन करना है, उसको फॉलो करना अथवा अनुष्ठान का प्रयत्न करना बहुश्रुत भक्ति है। यहाँ पर भी ऐसे ही बाहर वो जानकार है और हमने उनकी भक्ति की, विनय की, उसको भक्ति नहीं किया, उन्होंने जो उपदेश दिया है उसको फॉलो करना चाहिए। दर्शन विशुद्धता आदि के बिना यह संभव नहीं है। प्रवचन भक्ति सिद्धांत अर्थात 12 अंगों को प्रवचन कहते हैं। प्रकृष्टस्य वचनम प्रवचनम, प्र यानि विशेष, प्रकृष्ट उत्कृष्ट, श्रेष्ठ आत्मा के वचनों को प्रवचन कहा है, उनके प्रति भक्ति को प्रवचन भक्ति कहते हैं। इसमें भी शेष कारणों का अंतर्भाव रहता है। प्रवचन वत्सलता महाव्रती देश संयमी तथा असंयत समय दृष्टि में प्रेम रखना प्रवचन वत्सलता है। ये बात आई थी ना, उनको प्रवचन कहा है, किसको? महाव्रती है, पांचवें गुण स्थान वाले, चौथे गुण स्थान वाले, उनको प्रवचन कहा। और उनमें प्रेम रखना प्रवचन वत्सलता है। इससे ही तीर्थंकर नाम कर्म का बंध कैसे होता है यह शंका नहीं करना चाहिए, कारण महाव्रतादिक आगमिक विषयों में गाढ़ अनुराग का दर्शन विशुद्धता आदि से अविना भाव है। यानी जिसके दर्शन विशुद्धि है तो कहते कि महाव्रतादिक आगमिक विषयों में उसका गाढ़ अनुराग होता है, यानी वो धारण करने वाले जीवों में भी और आगम में भी। इस तरह से प्रवचन प्रभावना, प्रवचन अर्थात आगम की प्रभावना करने का भाव प्रवचन प्रभावनता है। उत्कृष्ट प्रवचन प्रभावना का दर्शन विशुद्धिता के साथ अविनाभाव है। बिना समय दर्शन की निर्मलता जितनी अधिक होगी उसके बिना ये संभव नहीं है। अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग युक्तता, अभीक्ष्ण अर्थात बहुबार भावश्रुत अथवा द्रव्य श्रुत में उपयोग को लगाना अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग युक्तता है। बहुत अच्छा, क्या कहा? बहुत बार भावश्रुत या द्रव्य श्रुत में उपयोग लगाना वो अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग युक्तता है। इससे तीर्थंकर नाम कर्म का बंध होता है। दर्शन विशुद्धता के बिना इसकी अनुपपत्ति है। इन 16 कारणों से तीर्थंकर नाम कर्म का बंध होता है अथवा समय दर्शन के होने पर शेष कारणों में से 1-2 आदि के संयोग से भी बंध होता है। इसको भी समझ सकना, क्योंकि चौथे गुणस्थान से भी लेकर है ना, ये आगे जो साधुओं के योग्य बताए हैं तो इसलिए उसमें से 1-2 होने पर भी कहते हैं। इस कर्म के उदय से होते ही है, उसके गर्भित होते हैं। वो कैसे गर्भित करना है? जैसे चौथे वाले का भी दर्शन विशुद्धि तो मेन है ही है, तो उसमें भी उसके तो उस प्रमाण में होंगे वहां पर। यही तो बता रहे अभी हमने, एक में गर्भित कैसे होते ही सब बताया। अथवा कहकर उन्होंने दूसरे भी पॉइंट बताए। इस कर्म के उदय से, इस कर्म का कब उदय होता है? हाँ, ब्रह्मा 13वें में सुर असुर तथा मनुष्य लोक के द्वारा अर्चनीय, अर्चना करना है, पूजा ही होती है उनकी, पूजनीय, वंदनीय तथा नमस्करणीय धर्म तीर्थ के कर्ता जिन केवली होते हैं। धर्म तीर्थ है ने उसका जो तीर्थ का होता है उपदेश, जो तरने के लिए हमें कार्यभूत है, तो धर्म तीर्थ के करने वाले हैं, इसलिए उनको तीर्थंकर कहते हैं। इस प्रकार अभी हमने ये सब किस में देखा? बंध विचय स्वामित्व ओघ में देखा। तो जो जो ओघ में देखा हमने स्वामित्व, कौन से गुणस्थान से कौन से गुणस्थान तक होता है, बस इतनी तो बात देखी थी हमने। तो ऐसा ही स्वामित्व और कहाँ कहाँ लागू होगा? तो पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय पर्याप्त, त्रस, त्रस पर्याप्त, तथा भव्य सिद्धिकों में ओघवत भंग जानना, क्योंकि सारे गुणस्थान तो भव्यों में हो गए ना, त्रसों में भी हो गए, पंचेंद्रियों में भी हो गए। तो पंचेंद्रिय इन जनरल कहेंगे तो भी हो गए, पंचेंद्रिय पर्याप्त कहेंगे तो भी ये सारे भंग हो गए। अब मार्गणाओं में अलग अलग हमको देखना है। मार्गणा कौन गिनाना चाहते हैं? अश्विन भाई आप गिनाएंगे? माइक में गिनाओ।
गति जाति कषाय,
जाति नहीं,
गति,
गति इंद्रिय काय,
अब गति इंद्रिय काय,
हाँ,
योग वेद कषाय,
योग वेद कषाय,
ज्ञान संयम दर्शन,
ज्ञान संयम दर्शन,
सम्यक नहीं, गर्भ सभ्यत्व, अरे सभ्यत्व लेशिया
संगी,
संगी
भव्य,
भव्य और उपयोग नहीं,
उपयोग वो प्ररूप नहीं, ये तो 14 ही होते हैं। देखो इसे आपको याद करना है, गति इंद्रिय काय, योग वेद कषाय, ज्ञान संयम दर्शन, सम्यक्त्व लेशा, सम्यक्त्व और संगी, आहार भव्य और आहार। देखो अभी हम कहेंगे आदेश से, अरे मार्गणाओं में, अभी गति मार्गणा में पहले नारकियों में बताएंगे। तो नारकियों में ये सभी प्रकृतियां बनती है कि नहीं बनती, ये सब पहले नक्की करो। आहार नहीं बनेगी, अरे देवगति नहीं बनेगी, नरक गति नहीं बनेगी, देवाय नहीं बनेगी, एकेंद्रीय वगैरह नहीं बनेगी। जो बनती है वो कहाँ कहाँ बनती है? तो उसमें गुणस्थान कितने हैं? चार है। तो हमने हमेशा हम पहले ज्ञानावरण की बात करते हैं, तो नारकियों में जब कहना है वो किस तरह से कहेंगे कि पांच ज्ञानावरण है और छह दर्शनावरण, नौ है वो पहले दूसरे में बंधेगी। हमको पहले से चौथे तक बंधने वाली प्रकृतियों को उसके साथ बता देंगे ये सारे के बंधक कौन है, तो कहेंगे सभी नारकी उसके बंधक, ऐसा कहेंगे। देखो अभी हम पढ़ेंगे आदेश से नारकियों में पांच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, साता साता वेदनीय, अनंतानुबंधी चार को छोड़कर शेष बारह कषाय। स्त्री वो तो उसके पहले और दूसरे में ही बंधक है, सारे नारकी उसके बंधक नहीं है, ये पहले से चौथे तक सभी नारकी उसके बंधक है, ऐसे ये प्रकृतियां ली। हम बंधक कोई नहीं है, यानी सारे नारकी इनका बंधक कर ही रहे हैं, वो पहले दूसरे में बंधे विच्छित्ति होने वाली प्रकृतियां बाद में गिनेंगे। हाँ तो इसलिए बारह कषाय, स्त्री वेद नपुसक बिना सात नौ कषाय, यानी एट ए टाइम सात बनते ऐसा उसका अर्थ नहीं है, और लगातार पुरुष वेद ही बनता ऐसा नहीं है, पर पुरुष वेद का बंधक कौन है? पहला दूसरा तीसरा चौथा गुणस्थान वर्ती चारे होते हैं। मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, इन नारकी इन जनरल बात चल रही है, औदारिक तेजस कारमान शरीर, क्योंकि नारकी तो पंचेंद्रिय जाति को ही बांधते हैं, और मनुष्य गति कहने से पहले से चौथे गुणस्थान तक के नारकी मनुष्य गति को बांध सकते हैं। समचतुरस्थ संस्थान, औदारिक शरीर अंगोपांग, वर्णादि चार, मनुष्य गति प्रायज्ञानपूर्वी, अग्रु लघु उपघात परघात उच्छ्वास, प्रशस्त विहाय गति, वज्र ऋषभ नाराच सन, नाराच शब्द डालो बीच में, त्रस मादर पर्याप्त प्रत्येक, स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ, सुभग सुस्वर। देखो स्थिर अस्थिर शुभ अशुभ तो सभी बांधेंगे, समय दृष्टि भी बांधेंगे, परंतु वो दुस्वर दुर्भग अनादे वो नहीं बांधेंगे चौथे गुणस्थान वाले। अब जो चौथे वाले भी बांधते ऐसी प्रकृति यहाँ ली, यशस कीर्ति अयशस कीर्ति, निर्माण उच्च गोत्र, तथा पांच अंतराय का कौन बंधक है? वे सर्व बंधक है, अबंधक नहीं है। स्त्यांगृद्धि आदि 25 प्रकृतियों का ओघवत जानना चाहिए, अर्थात सासादन गुणस्थान पर्यंत बंधक है, ज्ञान वृद्धि आदि, क्योंकि दर्शनावरण ऊपर छह लिए, अभी रिमेनिंग दर्शनावरण लेना, उसके साथ साथ दूसरे गुणस्थान के सारी 25 प्रकृतियां गिनना यहाँ पर। अब मिथ्यात्व, नपुसक वेद, कुंडक संस्थान, असंप्राप्त सुपाटिका, सहनन का कौन बंधक है? तो मिथ्या दृष्टि बंधक है, ये बंधक है, शेष अबंधक है। अभी जो हमने पहले गुणस्थान में जो हम 16 गिनते थे, 16 में से ये 4 ही बनती है इनको, नारकियों को, बाकी बनती ही नहीं है, इसलिए उसके अबंधक बंधक यानी उसके उसके नाम ही नहीं लेना उसका, क्योंकि नारकियों में बंधने वाले में जो बनती उसमें बंधक अबंधक लगाना है। मनुष्यायु के बंधक का ओघवत जानना चाहिए, ओघवत यानी पहले वाला, दूसरे वाला और चौथे वाला, तीसरे वाला बंधता बंधक नहीं है, अर्थात तीसरे बिना अविरत गुणस्थान पर्यंत बंधक है। तीसरे बिना शब्द डालना चाहिए यहाँ पर। तीर्थंकर प्रकृति का कौन बंधक है? असंयत सम्य दृष्टि बंधक है, ये बंधक है, शेष अबंधक है। प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पृथ्वी पर्यंत ऐसा ही जानना, क्योंकि वहीं तक तीर्थंकर प्रकृति का बंध है, इसलिए वहां तक तो ऐसा ही जानना कहेंगे। चौथी, पांचवी तथा छठी पृथ्वियों में इसी प्रकार जानना चाहिए, विशेष यहाँ तीर्थंकर प्रकृति नहीं है। ये समझ में आती है बात? सातवीं पृथ्वी में अलग है, क्योंकि वहां तो मनुष्य गति बांधने वाला केवल चौथे गुणस्थान वाला, तीसरे चौथे वाला ही, चौथे वाला ही होगा। सातवीं पृथ्वी में छठी पृथ्वी के समान भंग है, विशेष यहाँ मनुष्यायु नहीं है, यानी सातवीं पृथ्वी में मनुष्यायु के बंध ही नहीं होता, किसी को भी नहीं होता, क्योंकि वहां के समय दृष्टि भी मिथ्यात्व में जाकर ही आयु का बंध करते हैं। एक बात, मनुष्य गति मनुष्य गत्यानुपूर्वी यानी प्राज्ञानुपूर्वी तथा उच्च गोत्र का कौन बंधक है? सम्यक मिथ्यात्व तथा असंयत समय दृष्टि जीव बंधक है, ये बंधक है, शेष अबंधक है, तीसरे चौथे वाले ही उसका बंधक है। ओके, तिर्यंच आयु का कौन बंधक है? मिथ्या दृष्टि बंधक है, ये बंधक है, शेष अबंधक है, क्योंकि आयु का बंधन संसाधन में भी नहीं होता है। वहां पर सातवें नरक में मात्र मिथ्यात्व गुणस्थान में ही आयु का बंध है, और वो भी तिर्यंच आयु का ही होता है, इसलिए मिथ्यात्व कहा। बाकी तिर्यंच गति वगैरह हमने ऊपर जो संसाधन में देखा था वैसा होगा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, अभी 48 नंबर के पेज पर आना। विशेषार्थ, सातवीं पृथ्वी वाला मरकर नियम से तिर्यंच होता है, इस कारण वहां मनुष्यायु का बंधन नहीं बताया है। मरण मिथ्यात्व गुणस्थान में ही होता है, और तिर्यंच आयु का बंध मिथ्यात्व गुणस्थान में ही होता है। मनुष्यद्विक तथा उच्च गोत्र का बंध मिश्र तथा अविरत सम्यक गुणस्थान में ही होता है, नीचे नहीं होता। ये नारकियों में उन्होंने बताया और नारकियों के भेदों में भी बता चुके, अब तिर्यंचों में बताना है। तिर्यंचों में वो क्या क्या नहीं बंधेंगे? आहार द्विक और तीर्थंकर का बंध नहीं होगा यहाँ पर। साल में आते हैं अभी तिर्यंचों में, यानी इन जनरल तिर्यंचों की बात चल रही है। तो तिर्यंचों में गुणस्थान कितने हैं? 5। तो पांचवे तक बनने वाले की पहले लिस्ट बताएंगे, ख्याल में ना? देखो, तिर्यंचों में 5 ज्ञानावरण, 6 दर्शनावरण, 7 असाता, प्रत्याख्यानावरण तथा संज्वलन रूप 8 कषाय, स्त्रीवेद नपुसक वेद बिना 7 9 कषाय, देवगति पंचेंद्रिय जाति, वैक्रियक तेजस कारमान शरीर, समचतुरस संस्थान, वैक्रियक अंगोपांग, वर्णादि 4, देवगति प्राज्ञानुपूर्वी, अगुरु लघु 4, प्रशस्त विहाय गति, त्रसादि 4, स्थिर स्थिर शुभ अशुभ, सुभग सुस्वर आदेय, यशकीर्ति अयशकीर्ति, निर्माण उच्च गोत्र, तथा पांच अंतरायों का कौन बंधक है, मिथ्या दृष्टि से लेकर देश संयमी पर्यंत सर्व बंधक है, अबंधक नहीं है। यानी पांचवें गुण स्थान में कौन कौन सी बन सकती है, वो पहले से पांचवें तक बनती है, इस अपेक्षा से उसको पहले ले लिया है ना, क्योंकि ज्ञानावरण को पहले बताना था। अब दर्शनावरण को कौन सी छुट्टी हो, स्त्यान वृद्धित्रिक, तो उसका नंबर अभी बताएंगे। स्त्यान वृद्धित्रिक अनंतानुबंधी चार, स्त्रीवेद, तिर्यंचायु मनुष्यायु। देखो हमें वहां हमेशा हम ओघ में जो देखते हैं मनुष्यायु को तो चौथे में लेते हैं, यहाँ तो तिर्यंच और मनुष्यों के लिए दूसरे में और छह प्रकृतियों की बंधु उच्छित्ति होती है ना, उसकी बात यहाँ बताएंगे। तिर्यंच गति मनुष्य गति, औदारिक शरीर, चार संस्थान यानी दूसरे गुणस्थान के बंधु उच्छित्ति प्लस ये मनुष्य संबंधी जो पांच प्रकृति होगी, पांच छह औदारिक अंगों, पांच सहनन। देखो वज्रषभ नारा सहनन को भी लिया यहाँ पर, दो अनुपूर्वी यानी तिर्यंच अनुपूर्वी मनुष्य अनुपूर्वी, उद्योत, अप्रशस्त विहाय गति, दुर्भग दुस्वर अनादेय, तथा नीच गोत्र का कौन बंधक है, मिथ्या दृष्टि तथा सासादन समय दृष्टि बंधक है, ये बंधक है, शेष अबंधक है। उसमें बोलो, उसमें बोलो।
हाँ,
विच्छित्ति कभी नहीं कहते दूसरे गुणस्थान में मनुष्य, यहाँ मनुष्य तिर्यंचायु के लिए तिर्यंचों के लिए लिया,
सामान्य तिर्यंचायु का विच्छित्ति हम लोग दूसरे गुणस्थान में लेते हैं,
सामान्य से तिर्यंचायु के लेते ही है,
पर दूसरे गुणस्थान से तिर्यंचायु बन सकती है,
बिल्कुल बनती है।
जो प्रथम सभ्यत्व के साथ जो गिर के जो शासन में आता है
अभी बनती है, तभी तो विच्छित्ति कही कि नहीं, आप प्रश्न क्यों पूछ रहे, विशुद्धि कहाँ, अभी तो संकलेश होकर गिर के आया है। प्रथमोपशम के काल में आयु का बंध नहीं है, गिरकर आता है तो देवायु बन सकती है, मनुष्यायु बन सकती है, तिर्यंचायु बन सकती है, नरकायु नहीं बनेगी क्योंकि वो पहले गुण स्थान में बनती है। नहीं समझे, क्या समझे? अरे आयु बंध के योग्य परिणाम है वहां पर, आप विशुद्धि कौन से वाली विशुद्धि ले रहे हैं? प्रथमोपशम छूट गया अभी उसका, अभी उसके संसाधन चल रहे हैं, उसका सम्यक तो छूट गया है और अभी मिथ्या तो के सन्मुख आने वाला है। और अनंतानुबंधी के कारण बंधने वाली प्रकृतियां बंधेगी वहां पर। हाँ देखो देखो, यानी हमेशा जो हम 25 गिनते हैं ना, उसके साथ मनुष्यायु भी लिया, वज्रषभ नारा सहनन भी लिया, औदारिक शरीर अंगोपांग भी लिए और मनुष्यायु भी लिए है ना, इस तरह से, और गत्यानुपूर्वी भी ले लिए, छह प्रकृति एक्स्ट्रा ली उन्होंने। मिथ्यात्व दंडक में ओघवत जानना, ये ओघवत यानी जो 16 प्रकृतियां है जो यहाँ तिर्यंचों की तो बन सकती है, इसलिए 16 की 16 विच्छित्ति होती है, तो उसके बंधक कौन है, तो मिथ्या दृष्टि बंधक है ऐसा कहेंगे। विशेष मिथ्यात्व हुंडक संस्थान आदि, आदि है ना 16 प्रकृतियां मिथ्यात्व दंडक में सम्मिलित है, उसको मिथ्यात्व दंडक कहेंगे। उनके बंधक मिथ्या दृष्टि होते हैं, वे बंधक है, शेष अबंधक है। अब कहते अप्रत्याख्यानावरण चार का कौन बंधक है, प्रत्याख्यानावरण संज्वलन के लिए तो पांचवे तक सभी लिए, अप्रत्याख्यानावरण के लिए तो चौथे तक ही लेना पड़ेगा। मिथ्या दृष्टि से लेकर असंयत सम्य दृष्टि पर्यंत बंधक है, ये बंधक है, शेष अबंधक है। देवायु का कौन बंधक है, मिथ्या दृष्टि सासादन सम्यक्त्वी असंयत सम्यक्त्वी तथा देश संयमी बंधक है, ये बंधक है शेष अबंधक है, यानी तीसरे में बनती नहीं है, बाकी सब में बनती है। अब ये तिर्यंच इन जनरल बात हुई, गति मार्गणा में तिर्यंचों के भेद कौन कौन से लक्ष्मी जी? गति मार्गणा की अपेक्षा हम सामान्य तिर्यंच कहने से सामान्य सब गर्भित आ गए। फिर गति मार्गणा में तिर्यंच गति के और क्या भेद है? एक तो तिर्यंच, फिर पंचेंद्र तिर्यंच, फिर तिर्यंच योनिमति, फिर लब्धि अपर्याप्त जो होते हैं। गति मार्गणा में लेना है। देखो यानी उसमें पंचेंद्र तिर्यंच इन जनरल कहेंगे, फिर पंचेंद्र तिर्यंच पर्याप्त कहेंगे, और फिर पंचेंद्र तिर्यंच योनिमति कहेंगे। देखो पंचेंद्र तिर्यंच पर्याप्तक, पंचेंद्र तिर्यंच योनिमति में तिर्यंचों के समान भंग जानना, यानी इन सब में पांच गुणस्थान होते हैं, इसलिए वो भंग इनका वैसा ही होगा। पंचेंद्रिय तिर्यंच लब्धि अपर्याप्तों में, ब्रह्मा आपको सोचना है लब्धि अपर्याप्तों में गुणस्थान कौन से हो गए? पहला ही गुणस्थान है, तो उसमें कौन कौन से प्रकृतियों के बंधक हो गए? जो नहीं बनती वो यहां नहीं लेना, जो पंचेंद्रिय तिर्यंचों में बन सकती थी वो सभी यहाँ बनती है क्या? नरक गति देवगति दोनों ही नहीं बंधेगी, देवायु और नरकायु वो भी नहीं बंधेगी, समझ में आती ना? तो बन नहीं बनने वाले को यहाँ नहीं लेना, यहाँ जो बनती है वो सारे उसके बंधक है, ऐसा कहेंगे। देखो यहाँ क्या कहते हैं, पंचेंद्रिय तिर्यंच लब्धि अपर्याप्तकों में पांच ज्ञानावरण, नौ के नौ अभिदर्शनावरण, साता असाता, ज्ञानावरण हुआ, दर्शनावरण वेदनी हुआ। अब मोहनी में मिथ्यात्व सोलह कषाय, नौ नौ कषाय, सब आ गए ना। हाँ अभी आयु में तिर्यंच आयु मनुष्यायु, क्योंकि दो ही गति और दो ही आयु बन सकते हैं इनके लिए पॉसिबिलिटी, तिर्यंच गति मनुष्य गति। पंचेंद्रिय जाति यानी पांच जाति होनी चाहिए, पंचेंद्रिय जाति ने एकेंद्रीय जाति द्विंद्रीय जाति तीन, इस तरह से पांचों जाति। ब्रह्मा ये जाति के पहले कॉमा लगाए ना, वो जाति के बाद लगाओ, पंच जाति ब्रैकेट में डाला उन्होंने, पंचेंद्रीय जाति का अर्थ थे पंच जाति, पांचों जाति, अकेली पंचेंद्रीय जाति नहीं लेना, एकेंद्रीय से पंचेंद्रीय जाति करना। औदारिक तेजस कारमान शरीर छह संस्थान, औदारिक शरीर अंगोपांग छह सहनन वर्णादि चार, मनुष्यानुपूर्य तिर्यंचानुपूर्य अगुरु लघु चार, आतप उद्योत दो विहाय गति, त्रसादि दस युगन यानी त्रस के वो चार और शुभ स्थिर अस्थिर के वो छह, निर्माण निज गोत्र उच्च गोत्र तथा पांच अंतराय का, कौन बंधक है? सर्व बंधक है, अबंधक नहीं है, समझ में आता? यहां बंधने वाली सभी प्रकृतियां गिनाई उन्होंने, संपूर्ण लब्धि अपर्याप्तों। अभी ऐसा ही कथन और कौन कौन से मार्गणाओं में लागू होगा? तो सभी लब्धि अपर्याप्तों, संपूर्ण एकेंद्रियों, संपूर्ण एकेंद्रियों कहने से एकेंद्रिय इंद्रिय मार्गणा में एकेंद्रिय, एकेंद्रिय पर्याप्त, एकेंद्रिय अपर्याप्त, इस तरह से सूक्ष्म एकेंद्रिय बांधर एकेंद्रिय, उसके सभी भेद प्रभेद सबको ले लेना, इसलिए सभी एकेंद्रियों। सर्व विकलेंद्रियों में इंद्रिय मार्गणा की अपेक्षा द्विंद्रिय तीन्द्रिय चतुरेंद्रिय में भी इसी प्रकार जानना चाहिए। विशेष कहां पर? देखो देखो वहां क्या लिखा है, वहाँ एक एक युगल में से एक एक ली है, प्रशस्त प्रकृति केवल ली है। यहाँ क्या लिखा है, त्रसादि दस युगल यानी त्रस युगल, बादल युगल, पर्याप्त युगल, वो उसके साथ आ जाना। दस किने है ना, तो उसके अपोजिट उसके साथ लेना। अकेले यश कीर्ति ना, स्थिर भी है, शुभ भी है, सुभग है, सुस्वर है, आदे है ना। अब विशेष पर्याय में लब्धि अपर्याप्त तिर्यंचों में नरकायु देवायु तथा वैकृत षटक का अभाव रहने से इनकी गणना नहीं की है। वैकृत षटक का अर्थ क्या होता है? देवगति, नरगति नरगत्यानुपूर्वी, देवगति देवगत्यानुपूर्वी, वैकृत वैकृत अंगोपान, हाँ इसको वैकृत षटक कहते हैं। हाँ, इनके मिथ्यात्व तो गुणस्थान ही पाया जाता है। देखो यहाँ क्या लिखा है, ताड़पत्र नष्ट हो जाने से इस प्रकरण का आगामी विषय नष्ट हो गया है। ग्रंथ के प्रकरण से ज्ञात होता है कि आचार्य महाराज ने मनुष्य गति आदि मार्गनाओं की अपेक्षा बंद सामित्य विषय प्ररूपणा का वर्णन दिया होगा। संबंध मिलाने की दृष्टि से श्री गोमरसार कर्मकांड के आश्रय से कुछ प्रकाश डाला जाता है। अब यह ना कि कर्मकांड के नियम बताए, पर नियम बताते हैं, परंतु जैसे यहाँ बताए ना, कैसे नारकियों में अमुक अमुक प्रकृतियाँ कहाँ से कहाँ तक बनती है, उस पद्धति से वर्णन आना चाहिए। जरा हमने ये जो निकाला है ना, ये महाबंध की त्रुटि अंश, लक्ष्मी एक नंबर के पेज पर ना वो एक करेक्शन था ऊपर से तीसरे पैराग्राफ में, पहला नंबर का तो त्रुटि अंश निकालना है और एक नंबर यानी विषय सूची के बाद जो एक नंबर लिखा है ना, पहले दो तीन पेज जाने दो, वो भी जाने दो जहां, हाँ एक नंबर राइट साइड में है ना, राइट एक नंबर का पेज, तो उसमें तीसरा पैराग्राफ ना, धवला पुस्तक छह में उसके लास्ट लाइन देखो, देखो धवला ब्रैकेट में लिखा है धवला पुस्तक छह पृष्ठ 5 से 44 लिखा है, वो 14 होना चाहिए। अभी हम अभी आए हैं पेज नंबर 2 पर, ये हमारा पढ़ चुके थे हम, ये बंध स्वामित्व विषय प्ररूपना, देखो पहले पेज पर आ रहा है, पहला पेज वो नीचे का पैराग्राफ लास्ट, प्रकृति समुत्कर्तन के पश्चात महाबंध पुस्तक 1 में पृष्ठ 37 पर बंध स्वामित्व विषय प्ररूपना प्रारंभ होती है जो हम अभी तक पढ़ते आए हैं। धवला पुस्तक 8 जो षटखंडगम का तृतीय खंड है वह भी बंध स्वामित्व विषय है, पूरी 8वीं पुस्तक बंध स्वामित्व विषय है। यही सूत्र वहां पाए जाते हैं जो अभी हमने जो सूत्र पढ़े वही वहां पर भी है। पृष्ठ 46 पर ओग से कथन करने पर पृष्ठ 47 से आदेश से नारकियों में बताया, अभी हमने पढ़ाया नारकी में, पढ़ाया तीरियंचों में, पढ़ा लब्धिया पर्याप्तों में भी पढ़ा, अभी पृष्ठ 48-49 पर तीरियंचों में बताया है जो अभी हमने पढ़ा। पंचेंद्रिय तीरियंच अपर्याप्तों में बताकर यहाँ से त्रुटित अंश प्रारंभ होता है। अब त्रुटित अंश जो अभी हमने धवला में देखा ना, वो त्रुटित अंश के बाद उन्होंने क्या लिखा है जरा देख लो पेज नंबर 50 पर, मूल प्राकृत में देखो, क्योंकि यहाँ उन्होंने पूरा ही यहाँ डिराइव किया है, वो 55 पेज तक चलेगा, हमको प्राकृत चाहिए। देखो 55 पेज पर आना, तो काल प्ररूपणा से शुरुआत हुई यानी पूरा बंध स्वामित्व सभी मार्गणाओं में नष्ट हो चुका है, केवल गति मार्गणा के 2 गतियों में बताया है, सभी मार्गणाओं में बताना चाहिए उसको, और वो सारा का सारा नष्ट हुआ है। और तो ये जो उनकी पद्धति है ना, अभी हमने कैसे देखा एक एक मार्गणा में कितने गुणस्थान होते हैं और वहां तक पहुंचने वाली कौन सी प्रकृतियां हैं, उसको कैसे निकालना, उस दृष्टि से ये सब लिखवाया है। ये हमने पहले हमने नहीं लिखे थे, हमने जब त्रुटि अंश यहाँ लिखवाए थे तब इसको नहीं लिखा था, हमने केवल उनकी जो उन्होंने लिखी हुई बात पढ़ी थी उनकी भी पढ़ेंगे हम, पहले जिस पद्धति से उन्होंने लिखा है उसी पद्धति से हमारी बात चलेगी यहाँ पर। पेज नंबर 2 पर आना। संपादक महोदय जी के द्वारा, यानी जो सुमेरु चंद दिवाकर जी है, उन्होंने पृष्ठ 50 से 54 तक विशेषार्थ के रूप में इस पर प्रकाश डाला गया है। पृष्ठ 55 से एक जीव की अपेक्षा काल प्ररूपणा के प्रकरण में आदेश से नारकियों की प्ररूपणा लिखी हुई, यानी उसमें ओग थी, प्ररूपणा चली गई है, जिसमें शुरू की ओग प्ररूपणा त्रुटित अंश में चली गई है, अर्थात त्रुटित अंश है बंद स्वामित्व विचय मनुष्य गति से लेकर शेष मार्गणाओं में तथा काल प्ररूपणा ओग से। चूंकि विशेषार्थ में गोमरसार कर्मकांड के आधार से यहाँ कहाँ कितनी प्रकृतियां बनती है इस पर प्रकाश डाला है, परंतु मैं यहाँ बंध स्वामित्व विचय की पद्धति से शेष मार्गणाओं में लिख रही हूँ। आधार और संदर्भ है धवला पुस्तक 8 बंध स्वामित्व विचय तथा काल प्ररूपणा भी ओग से लिखूंगे, यानी इसी पद्धति से हम उसको डिराइव करेंगे। अभी इसमें कोई प्रकृति रह जाए या कुछ है तो हम देख लेंगे अभी इसको। तो अभी हम यहाँ से पढ़ते हैं और इसके लिए मैंने धवला पुस्तक 8 का भी आधार लिया है, उसमें सूत्र सूत्र ले लिए हैं। तो ये बंध स्वामित्व विचय यहाँ से हम पढ़ेंगे। ये जो हमने त्रुटित अंश वाली जो है ना, उसमें से हम पढ़ रहे हैं। 2 नंबर का पृष्ठ है। अभी हमको मनुष्यों में लगाना है। मनुष्यों में मनुष्य, मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनियों में तीर्थंकर प्रकृति तक ओघ के समान भंग है। अब हम ओघ की बात देखते हैं। देख लो जरा पीछे करके क्या लिखा था ओघ में हमने। वो पहले में ज्ञान 5 ज्ञानावरण 4 दर्शन वगैरह वगैरह लिए थे। वो कहाँ तक बनती है? तो 10वें गुणस्थान तक बनती है। ये मनुष्यनी कहने से, मनुष्यनी के गुणस्थान कितने? 1 से 9। आप कहते 1 से 5। 1 से 14। स्त्रीवेद पूछेंगे, मनुष्यों में स्त्रीवेद कहेंगे तो 9 तक। वेद मार्गणा में स्त्रीवेदियों का गुणस्थान 9 तक, पर मनुष्यनी कहेंगे तो वो तो 14 गुणस्थान। इसलिए वो जो प्ररूपणा है ना ओग में, कौन सी हमने पहली प्ररूपणा देखी थी आपको याद होगा तो, ज्ञानावरण 5 दर्शनावरण 4 वगैरह वगैरह 1 से 10 तक बनते हैं। बाद में स्थान वृद्धि वगैरह पहले दूसरे वाले को बनते हैं, निद्रा प्रचला और उसके साथ बनने वाली जो है निद्रा प्रचला की बात, हाँ वो सारे यहाँ पर लागू हो। कहाँ तक? तीर्थंकर प्रकृति तक ओग के समान है। अभी जहाँ डिफरेंस है वो बताएंगे। विशेषता इतनी है कि द्विस्थानिक प्रकृतियों, द्विस्थानिक किसको कहते हैं? पहले 2 गुणस्थानों में बंधने वाली उसको द्विस्थानिक कहते हैं। और अप्रत्याख्यानावरण की प्ररूपणा पंचेंद्रिय तिर्यंचों के समान है। क्यों ऐसा कहा? द्विस्थानिक के दूसरे गुणस्थान में चाहिए, पहले 2 नहीं चाहिए, दूसरे गुणस्थान की बात चाहिए। द्विस्थानिक प्रकृति यानी दूसरे गुणस्थान वाली है, पहले 2 नहीं चाहिए ना, जरा पेंसिल से ये करो। द्विस्थानिक करते थे दूसरे गुणस्थान में बंधने वाली, दूसरे गुणस्थान में, पहले 2 नहीं चाहिए, दूसरे गुणस्थान में। क्योंकि हमने देखा ना दूसरे गुणस्थान में और 6 प्रकृतियां इंक्लूड कर दी थी, और अप्रत्याख्यानावरण की प्ररूपणा भी पंचेंद्रिय, क्योंकि अप्रत्याख्यान के साथ बाकी 6 प्रकृतियां नहीं लेना है। ओग के समान नहीं, वो मनुष्य और तिर्यंचों में ओग के समान दूसरे गुणस्थान वाली बात और चौथे गुणस्थान वाली बात ओग के समान नहीं होती, क्योंकि वहां चौथे में अकेला अप्रत्याख्यानावरण लेते और दूसरे में अन्य 6 प्रकृतियां ले लेते, इसलिए वहां पंचेंद्रिय तिर्यंचों के समान है। ये पद्धति है ग्रंथकार की, जो पहले बता चुका है उसके उसके समान है कह देते हैं। अब उन्होंने मूल पुस्तक में पंचेंद्रिय तिर्यंचों की प्ररूपणा की थी, इसलिए उसके समान है। मनुष्य अपर्याप्तों की प्ररूपणा पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्तकों के समान है। उन्होंने वहाँ पर बताया सभी अपर्याप्तों की प्ररूपना ऐसे ही है, ये यहाँ नहीं लिखते तो भी चलता, परंतु मनुष्यों का ये भेद है इसलिए इसमें लिख दिया। अब देवगति में, देवों में ज्ञानावरणादि से यानी चौथे गुणस्थान वाले सभी ले लेना, उसकी जो सब प्रकृतियाँ बनती यहाँ तक की स्त्यान वृद्धि आदि यानी दूसरे गुणस्थान वाले, तीर्थंकर मनुष्यायु का भंग प्रथम नरक के नारकी के समान है, यानी मनुष्यायु अलग से इसलिए बताइए पहले दूसरे और चौथे में बनती है और बाकी तीर्थंकर प्रकृति चौथे वाले को ही बनती है। स्त्यान वृद्धि आदि जो है दूसरे में बनने वाली और ज्ञानावरण आदि जो बनती है उसकी बात है यहाँ पर। मिथ्यात्व दंडक भी इसी प्रकार है, परंतु नारकियों में मिथ्यात्व दंडक में मिथ्यात्व उंडक संसार नपुसक वेद और असंप्राप्त चार ही लिए थे, यहाँ एकेंद्रीय स्थावर और आतप को भी इंक्लूड करना है, नारकियों से विशेषता है। हाँ तो कहते हैं मिथ्यात्व दंडक भी इसी प्रकार है, विशेषता यह है कि जो डिफरेंस है उसको कहेंगे एकेंद्रीय स्थावर आतप प्रकृतियों को कहना चाहिए, ये उनकी पद्धति से सब लिखवाया है। हाँ। सौधर्म अभी देवगति के जो भेद है, सौधर्म ईशान में इसी प्रकार भंग है, भवनत्रिक में तीर्थंकर बिना इसी प्रकार भंग है, क्योंकि वहां बाकी तो प्रकृतियां बनती है एकेंद्रीय स्थावर वगैरह, तीर्थंकर प्रकृति का बंध वहां नहीं होता है इसलिए उसके बिना ले लिया। सनत कुमार आदि सहस्रार्थ तक प्रथम नरक के नारकी के समान भंग है, क्योंकि वहां पंचेंद्रीय जाति वगैरह उतनी ही बनती है सब, इसलिए उसके समान भंग बताया। आनत आदि में तीर्यंच गति तीर्यंच गत्यानुपूर्वी तीर्यंचायु उद्योग बिना शेष भंग इसी प्रकार है, क्योंकि हमने देखा तो वो सब मनुष्य गति और मनुष्यायु ही बांधते हैं। अनुदिश अनुत्तर में केवल चौथा ही गुणस्थान है, वहां ज्ञानावरण आदि दंडक कहना चाहिए, दंडक कहना चाहिए, ये सभी उसके बंधक है कोई अबंधक नहीं, इस तरह से उसका कथन होगा। अब ये हो गया हमारी गति मार्गणा, अब इंद्रिय मार्गना, सर्व एकेंद्रिय सर्व विकलन विकले चाहिए विकलेंद्रिय हुआ विकलेंद्रिय और जो प्रूफ रीडिंग की कुछ कुछ रह जाएगी वो निकलेगी। सर्व स्थावर काय जीवों की प्ररूपणा पंचेंद्रिय तीर्यंच लब्धि अपर्याप्तकों के समान है, वहां पर भी बताया था सभी अपर्याप्तों के सभी विकलेंद्रियों के ऐसी प्ररूपणा है करके बताया था। इतना विशेष है कि देखो उसमें क्या विशेषता होगी, हाँ तेज कायिक और वायु कायिकों में मनुष्यायु मनुष्य गति मनुष्य गत्यानुपूर्वी उच्च गोत्र प्रकृतियां नहीं है, नहीं उसका बंध ही नहीं होता तो उसका नाम ही नहीं लेंगे वहां पर। पंचेंद्रिय द्विक तथा त्रस द्विक का भंग ओघ के समान है, इंद्रिय मार्गणा में पंचेंद्रिय पंचेंद्रिय पर्याप्त ओघ के समान और काय मार्गणा में त्रस त्रस पर्याप्त ओघ के समान भंग है। पहले वो ओघ में बता चुके थे पंचेंद्रिय द्विक और त्रसद्विक और भव्य, ये ओघ के समान ये बता चुके थे वो। अब गति इंद्रिय काय हो गए ना, योग योग मार्गानुसार मनोयोगी पांच मनोयोगी पांच वचन, देखो पांच कहते हैं, एक तो सामान्य, एक सामान्य से मनोयोग एक भंग होता है और फिर उसके चार भेद अलग, इसलिए पांच कहलाते हैं, पांच वचन योगी और काय योगियों में ओघ के समान भंग है। विशेषता यह है कि साता वेदनीय का अबंधक नहीं है, ब्रह्मा ऐसा क्यों कहा, हमने तो वहां लिखा है आप पढ़े बिना आप कह सकते हैं, अबंधक नहीं है, तेरहवें तक है और वहां तक, हाँ वहां तक तो सारे बंधक है ही है ना, ख्याल में आई ना बात, अबंधक कौन होते हैं तो चौदहवें वाले होते हैं अबंधक, परंतु वहां तो योग मार्गणा में हमको चौदहवें को इंक्लूड ही नहीं करते, तो जब तक योग मार्गणा है तो उसके साथ उसके बंधक हो गए। इसका कारण भी ब्रैकेट में लिख लिया, क्योंकि ओघ में अयोग केवली को अबंधक कहा था, यहाँ योग सयोगी केवली तक ही है, यानी योग मार्गणा में हम अयोगी को लेते ही नहीं है, अभी योग में इन जनरल बात हुई, पांच मनोयोगी, पांच वचन योगी और कायोगी। अब कहते औदारिक कायोगियों में मनुष्यों के समान भंग है। हाँ, वो तो सब तेरहवे तक होता है औदारिक कायोग, तो मनुष्यों के समान भंग। साता वेदनीय का भंग मनोयोगियों के समान है, यानी साता वेदनीय में क्या है, अबंधक नहीं है। औदारिक कायोगी में उसके रहते हुए अबंधक कोई नहीं है। औदारिक मिश्र कायोगियों में, अभी प्रेरणा बिन आपको बताना है, पढ़ लिया नहीं है, अच्छा मालूम है। औदारिक मिश्र कायोग में गुणस्थान बताने, हाँ पहला है, दूसरा है, चौथा है और तेरहवा। पहले दूसरे और चौथे में तो मरकर जा सकते हैं, और तेरहवे में कब होता है औदारिक मिश्र, कौन सा कपट में, क्या कहते हैं औदारिक मिश्र कायोगियों में पहला, दूसरा, चौथा, तेरवा गुणस्थान है। तो ज्ञानावरण दंडक, स्त्यान वृद्धि दंडक, मिथ्यात्व दंडक औदारिक कायोगी के समान है। विशेषता यह है कि तिर्यंचायु मनुष्यायु का बंध मात्र पहले गुणस्थान में मिथ्यात्व दंडक के साथ कहना चाहिए। क्यों कहा ऐसा, देखो दूसरे में है ना मिश्र का योग, तो क्यों नहीं लिया, आयु का बंध औदारिक मिश्र अवस्था में नहीं होगा दूसरे और चौथे वाले को। पहले गुणस्थान में औदारिक मिश्र वाले ने लब्धि अपर्याप्तक वाले है ना, उनके तो आयु का बंध तो होना ही है, तो तिर्यंच आयु मनुष्यायु को वहां लिया। औदारिक मिश्र में आयु बंध नहीं होता ऐसा नहीं कहा। फिर से औदारिक मिश्र का योग लब्धिया पर्याप्त तो कौन, तो एकमात्र औदारिक मिश्र ही तो है ना, उनके तो आयु का तो बंध, उनका गुणस्थान पहला है, तो पहले गुणस्थान में औदारिक मिश्र वाले जो लब्धिया पर्याप्त है उनके तिर्यंचायु मनुष्यायु का बंध होगा। तो दूसरे गुणस्थान वाला कब है, वो शरीर पर्याप्ति पूरी होने तक। चौथे गुणस्थान वाला शरीर, वहां तो आयु बंधने का सवाल नहीं है, पर्याप्त जीव है वो, पर्याप्ति पूर्ण होकर बाद में उनका आयु बंद होगा, तब उनको औदारिक मिश्र का योग नहीं रहेगा। इसलिए यहां उसके बंधक कौन है, पहले गुणस्थान वर्ती है ऐसा कहेंगे। औदारिक मिश्र का योग में तिर्यंचायु मनुष्यायु के बंधक कौन है, तो पहले गुणस्थान वाले हो गए। फिर से देखो ज्ञानावरण दंडक औदारिक कायोगी के समान ने क्या है, औदारिक कायोगी में तो हम पहले गुणस्थान से लेकर दसवें गुणस्थान तक कहते थे, यहाँ क्या कहना पड़ेगा, उसके गुणस्थान ही पहला, दूसरा, चौथा है और तेरवा। तो ज्ञानावरण दंडक में क्या कहेंगे, तेरवा वाला तो बांधते नहीं है, पहला दूसरा और चौथे गुणस्थान वाले इसके बंधक है, तेरवा गुणस्थान वाला उसका अबंधक है कहेंगे। समझ में आती है बात। स्त्यान वृद्धि दंडक वाले को पहले और दूसरे वाले बंधक है, हाँ। उसमें केवल वो आयु को छोड़ देना है। मिथ्यात्व दंडक बताया, उसके साथ वो आयु को दो लेना है। देखो विशेषता यह है कि तिर्यंचायु मनुष्यायु का बंध मात्र पहले गुणस्थान में मिथ्यात्व दंडक के साथ कहना चाहिए। मिथ्यात्व दंडक में देखो क्या लेना नहीं क्या लेना, तो नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी, नरकायु बिना कहना चाहिए। फिर से औदारिक मिश्र अवस्था में दूसरा और चौथा तो उसको बांधता ही नहीं है, तो पहले गुणस्थान वाले तो हमेशा बांधते हैं, परंतु औदारिक मिश्र वाले नरक गति को नहीं बांध लेंगे, क्योंकि पर्याप्त जीवों को भी औदारिक मिश्र होता है, पर अपर्याप्त जब है जीव तब तक नरक गति देवगति कुछ नहीं बांधता। हाँ, चौथे गुणस्थान वाला औदारिक मिश्र जो है वो देवगति को बांधेगा, पर यह नरक गति को कोई नहीं बांधेगा। इसलिए कहते कि नरक गति नरक गत्यानुपूरी नरकायु बिना कहना चाहिए। अब देवगति चतुष्क और तीर्थंकर प्रकृति के फास्ट शुरू से हम स्लोली लेते हैं, थोड़ा स्लोली लेते हैं। पहले में पहले हमको क्या देखना है, ऊपर औदारिक का योगी तक समझ में आई बात, हमको अभी औदारिक मिश्र को देखना है। पहले में पहले नक्की करना औदारिक मिश्र जो काय योग है वो किसके होता है। हाँ, औदारिक मिश्र तो मनुष्य तीरियंचों के कब होता है, सभी लब्धि अपर्याप्तों को पूरे लाइफ टाइम तक लब्धि अपर्याप्त को औदारिक मिश्र होगा, और जो पर्याप्त जीव है सारे ही तो उनके शरीर पर्याप्ति होने तक औदारिक मिश्र है। अब वो औदारिक मिश्र कौन कौन से गुणस्थान के साथ हो सकता है, तो लब्धि अपर्याप्तक है और बाकी भी बहुत सारे जो है मिथ्या तो गुणस्थान में तो होता ही होता है, पहला गुणस्थान। और जो देव नारकी जो है सांसाधन के साथ मरकर मनुष्यों में तिरियंचों में आते हैं उनके भी लब्धि अपर्याप्त अवस्था में सांसाधन गुणस्थान है, लब्धि अपर्याप्त नहीं निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था है, यानी सांसाधन में जन्म लेते बाद में वो मिथ्यात्व में आ जाते, यानी दूसरे गुणस्थान के साथ वो औदारिक मिश्र में आए हुए हैं। कौन? देव और नारकी मरकर वो आ गए। और कौन आते हैं? तो सम्य दर्शन के साथ जो मनुष्यों में आए देव और नरक से लेकर, या यहाँ का जो बहुभूमि का तीर्यंच मनुष्य हुआ है क्षायिक के साथ वो भी औदारिक मिश्र में सम्यदर्शी है, चौथा गुणस्थान है। अब कौन से जो कौन कौन सी प्रकृतियां बांधते हैं, जो मिथ्या दृष्टि जो है और औदारिक मिश्र काल है, तो रेगुलर जो मिथ्या दृष्टि बांधते हैं उसमें से क्या नहीं बांधते हैं, मिथ्या दृष्टि की बात है, मिथ्या दृष्टि औदारिक मिश्र वाले कौन से प्रकृतियां नहीं बांधेंगे, तो ये वैकृत षटक को नहीं बांधेंगे और देवायु इसको भी नहीं बांधेंगे, देवायु और नरकायु को। परंतु जो लब्धि अपर्याप्त वाले वो मनुष्यायु और तिरियंचायु को तो बांधेंगे क्योंकि उनके तो आयु तो बांधनी है, परंतु अन्य जो मिथ्या दृष्टि जो पर्याप्त होने वाले हैं वो आयु का बंधन नहीं करेंगे, यानी निवृत्ति अपर्याप्त वाले जीव है वो आयु का बंधन नहीं करते। फिर से निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था किसके होती है, जो पर्याप्त होने वाले उनका आयु का बंधन अपर्याप्त अवस्था में होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि पर्याप्ति हो जाएगी बाद में जब आयु का बंधन रहेगा तब जाके वो आयु का बंधन करेंगे। यहां तक बातें हो गई ना, यानी अभी हमने क्या नक्की किया है, औदारिक मिश्र है तो गुणस्थान किसी का पहला है, किसी का दूसरा है, किसी का चौथा है, और वो तेरहवें में भी एक समय के लिए होता है, वो भी हमने देख लिया। अभी यहाँ हमको बंध स्वामित्व विचय में कैसे क्या करना है कि उनको कौन कौन सी प्रकृतियों का बंध कौन से गुणस्थान वाले करते हैं। पहले में पहले हम ज्ञानावरण से शुरू करते हैं, तो जब ज्ञानावरण की बात है तेरहवें वाला तो ज्ञान कुछ बांधता नहीं है, खाली एक सातावेदने का बंध करता है। तो पूछेंगे सातावेदने का बंधक कौन है, तो हम कहेंगे पहले वाला भी है, दूसरे वाला भी है, चौथे वाला भी है, तेरहवें वाला भी है। परंतु अभी ज्ञानावरण का दंडक वाले कौन कौन है, तो पहले वाला, दूसरे वाला और चौथे वाला, वो ज्ञानावरण दंडक का बंध करते हैं। अब उस ज्ञानावरण दंडक में हमने क्या क्या दे सकते हैं, अभी चौथे गुणस्थान की अपेक्षा बात करनी हमको, तो पांच ज्ञानावरण है, छह दर्शनावरण है, तो इस तरह से हमको सब सोचना है उसके बारे में। तो दूसरा कौन कौन सा दंडक होगा, तो जो दूसरे गुणस्थान में ही जो बंध विच्छित्ति होती है जिसको हम स्त्यान वृद्धि दंडक कहते हैं, और ये कौन सा है, औदारिक मिश्र है। जो ज्ञानावरण दंडक के साथ हमको वहां वो चौथे गुणस्थान में बंधने वाले जो है औदारिक मिश्र वाला है, चौथे गुणस्थान वाला, तो मनुष्य गति वगैरह वहां नहीं लेना है हमको, वो दूसरे गुणस्थान में लेना है, क्योंकि मनुष्य तीरियंचों के लिए औदारिक मिश्र मनुष्य तीरियंचों के ही होगा और उनके दूसरे गुणस्थान में वो मनुष्य गति वगैरह बंधेंगे, तो स्थान वृद्धि दंडक में हमको उसको लेना पड़ेगा। यानी स्थान वृद्धि दंडक जो है औदारिक काय योगी के समान, औदारिक काय योग भी हमको मनुष्य तीरियंचों में होता है इसलिए उसके समान यहां भी ले लेना है। यहां तक समझ में? अब मिथ्यात्व तो दंडक की बात है, तो मिथ्यात्व तो दंडक यानी पहले गुणस्थान में बंधने योग्य है, पर पहले गुणस्थान में जब औदारिक मिश्र होता है तो क्या नहीं बनता है, तो वैकरिक षटक नहीं बनेगा, यानी देवगति देवगत्यानुपूर्वी, नरगति नरगत्यानुपूर्वी, वैकरिक वैकरिक अंगोपांग और देवायु नरकायु भी नहीं बनेगी उनके। जो बनती है उसकी चर्चा ही नहीं करेंगे, वो उसके नहीं बनती इसके हमको मालूम होना चाहिए। परंतु उनका बंध कौन करेगा? क्या देवगति देवगत्यानुपूर्वी, वैकरिक वैकरिक अंगोपांग का बंध औदारिक मिश्र अवस्था में कौन कर सकता है? हाँ, बंद करेंगे, क्योंकि दूसरे गुणस्थान वाले भी नहीं बांधेंगे, क्योंकि वो मिश्र अवस्था में बांध नहीं सकता कोई, निवृत्ति अपर्याप्त है ना। दूसरे गुणस्थान में जो औदारिक मिश्र में आया है वो निवृत्ति अपर्याप्त जीव है, वो भी देवगति को नहीं बांधेगा। तो निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में भी देवगति को बांधने वाला कौन होगा? तो सम्यक दृष्टि मनुष्य और दिव्यांश। तो वो क्या क्या बांध सकता है? देवगति देवगत्यानुपूरी, उसके साथ वैकरिक वैकरिक अंगोपांग बांधेगा, उसको देव चतुष्क कहा। और जो मनुष्य में जो तीर्थंकर का जीव जो मनुष्य में जन्म लेता है, नरक से आएगा या देव से आएगा, उसके औदारिक मिश्र अवस्था में तीर्थंकर प्रकृति भी बंधेगी, तो उसका बंधक कौन है? तो चौथे गुणस्थान वाला ही बंधक है उसका, अन्य कोई उसके बंधक नहीं है। अब यहीं रुकते हम, कल उसके साथ आठवीं पुस्तक भी लाना, उसमें से ही मैंने बहुत सारा डिराइव किया है, फिर भी हो पुस्तक तो कहीं रेफरेंस के लिए अच्छा रहेगा। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवाणी मस्तक नहुं सदा देत हो। अश्विन भाई।